ये दास्तान बगैर गर्दन का शहजादा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जमाने में एक सरफिरा शहजादा अपने तुंदो तेज घोड़े पर सवार जंगलों और सहराओं में तफरीह किया करता था। यूं तो वो बहुत ही माहिर घुड़सवार था और बड़ी ऊंची ऊंची रुकावटों को पार कर लेता था, लेकिन एक दिन अचानक उसे काबू न रहा और वो सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। गर्दन की हड्डियों पर ऐसा दबाव पड़ा कि गर्दन उसके शानों के बीच धंस गई और हालत ये हो गई जैसे गर्दन कभी थी ही नहीं। उसका सर इस तरह उसके जिस्म में धंस गया था कि वो उसे इधर उधर घुमा भी नहीं सकता था, और सर घुमाने के लिए उसे पूरा बदन मोड़ना पड़ता था। बड़े बड़े हकीम और तबीब उसके लिए बुलाए गए। सब ने बड़ी कोशिशें की लेकिन कोई फायदा नहीं। यहां तक कि एक दिन एक यूनानी फलसफी आया और उसने कहा, मैं शहजादे की गर्दन को उसकी असली हालत पर ला सकता हूं। ये सुनकर दरबार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सारे तबीब हटा दिए गए और यूनानी तबीब आगे बढ़ा और शहजादे के नजदीक जाकर उसकी गर्दन के मोहरों पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। इस तरह गर्दन की रगें सीधी हो गईं और गर्दन अपनी असली हालत पर आ गई। ये देखकर एक वजीर ने तबीब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप ना होते तो शहजादे की हालत कभी ठीक ना होती। सब लोगों ने उस यूनानी तबीब का शुक्रिया अदा किया और तय पाया कि वो तबीब दूसरे दिन भी महल में आएगा। उस वक्त तबीब के चले जाने के बाद खुदगर्ज शहजादे ने वजीर को बड़े गुस्से में मुखातिब किया और कहा, ए अहमक, तेरी जुरत कैसे हुई कि मेरी तौहीन करे? तूने किस लिए कहा कि अगर तबीब ना होता तो मेरी हालत ठीक ना होती? और फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बेअक्ल वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म की तामील हुई और वजीर को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। अगले दिन वो तबीब शहजादे के महल में दोबारा आया ताकि अगर जरूरत हो तो मजीद दवाएं तजवीज कर सके। शहजादा उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था और गुरूर व तकबर से इधर उधर देख रहा था। उसने तबीब को देखा तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की, गोया तबीब ने कल उसकी जान बचाई ही ना हो। यूनानी हकीम शहजादे के सुलूक से बहुत रंजीदा हुआ और उसे ये महसूस हुआ कि शहजादे के इस रवैये से उसकी तौहीन हुई है। हालांकि हर जगह और हर शख्स उसे اس کے علم کی بنیاد پر خاص احترام کے لائق سمجھتا تھا۔ وہ بغیر اس کے کہ کچھ کہے سنے شہزادے کے محل سے باہر نکل گیا۔ وہ زیر لب کہہ رہا تھا، اگر کل اس کی گردن کے مہرے درست نہ کیے ہوتے تو وہ آج مجھ سے روگردانی نہ کرتا۔ طبیب اپنے گھر پہنچ کر سوچ بچار میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ایک شاگرد کو آواز دی اور اسے ایک جڑی بوٹی دی اور کہا، اسے شہزادے کے محل میں لے جاؤ اور کہو کہ اسے انگیٹھی میں جلائے تاکہ اس کے دھوئیں سے اس کا علاج مکمل ہو جائے۔ شاگرد وہ جڑی بوٹی لے کر شہزادے کے محل میں گیا۔ یونانی حکیم کی بھیجی ہوئی اس دوا کو انگیٹھی میں جلایا گیا۔ اس کا دھواں بلند ہوا۔ شہزادے کو اس دھوئیں کے اثر سے ایک چھینک آئی۔ اس چھینک کی وجہ سے اس کی گردن دوبارہ اپنی جگہ سے ٹل گئی اور پہلے کی طرح پھر سارے مہرے درہم برہم ہو گئے۔ شہزادہ جو اب اپنے کیے پر پشیمان تھا، اس نے حکم دیا کہ یونانی حکیم کو بلا کر لایا جائے، لیکن طبیب شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سپاہیوں نے کافی ڈھونڈا مگر اس کو نہ پایا۔ جی ہاں، شہزادے کا تکبر اس بات کا باعث ہوا کہ اس کا سر ہمیشہ کے لیے ٹوٹی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے تن پر ٹکا رہے۔